ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने छत्रसाल स्टेडियम में आज दिल्ली राज्य स्कूल खेल 2024-25 का शुभारंभ किया। दिल्ली के एम्स में जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में 5 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स का शुभारंभ किया गया। दिल्ली के मोतीनगर में नगर निगम की ओपन एयर जिम दुर्घटना में एक बच्चे की मृत्यु पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और रेल मंत्रालय दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 7,000 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश कराने को लेकर क्लाउड सीडिंग प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में गोपाल राय ने प्रदूषण के स्तर से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए आपातकालीन उपायों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए कहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आज हुई बैठक के बाद श्री राय ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कृत्रिम बारिश कराने के लिए केंद्र सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली सरकार पर यमुना के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने विरोध स्वरूप यमुना में डुबकी भी लगाई। इस दौरान श्री सचदेवा ने दिल्ली वासियों के लिए यमुना नदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, लेकिन प्रदूषण के कारण दिल्ली का कोई भी व्यक्ति यमुना के घाट पर पूजा नहीं कर पा रहा है।
10 दिन बाद जो पूर्वांचल का त्यौहार होना है, मेरी माताएं बहनें इस गंदे पानी में कैसे जाएंगी, वो अरविंद केजरीवाल को दिखाना जरूरी है कि तो ये पानी हाथ लगाने लायक भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा दिया, माँ यमुना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी।
को देखते हुए आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शामिल हुए। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में ग्रैप 2 के लागू होने के बाद इसको अमल में लाने के लिए कार्यबल की कमी है, इसलिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जगह जगह तैनात करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स डस्ट कंट्रोल और व्हीकल कंट्रोल करने के लिए लगाए जाएंगे। बैठक के दौरान सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव करने पर भी चर्चा हुई, ताकि राजधानी की सड़कों पर वाहनों की संख्या कम की जा सके। श्री राय ने बताया कि दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से आने वाली डीजल बसों को रोकने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा और नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज दिल्ली राज्य स्कूल खेल 2024-25 का शुभारंभ किया। श्रीमती आदिशी ने कहा कि इन खेलों के अंतर्गत दिल्ली के स्कूलों में उभरती खेल प्रतिभाओं को निखारने और विद्यार्थियों को अपने कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली राज्य स्कूल खेलों में 34 खेलों को शामिल किया गया है। इनमें एथलेटिक्स के ट्रैक एंड फील्ड खेलों के अलावा स्विमिंग, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे, कुश्ती, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, जूडो, बास्केटबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बेसबॉल, योग, वॉलीबॉल, स्केटिंग, शतरंज, वुशू आदि खेल शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में पैरा एथलीट विद्यार्थियों के लिए 13 अलग अलग खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया प्रबंधन ने परिसर में दीपावली के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बाधा डालने वाले अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। प्रबंधन ने पुलिस से अनुरोध किया है कि वह ऐसे सभी अज्ञात व्यक्तियों और असामाजिक तत्वों की पहचान करें, जिससे उन पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा, यह संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शोध प्रदान करने में अग्रणी रहा है, बल्कि अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्र की समन्वयात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने में भी अग्रणी रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में 5 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स का उद्घाटन किया। इन ऑपरेशन थिएटर्स के जरिए ट्रॉमा सेंटर में हर महीने लगभग 2500 रोगियों का उपचार किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ओटी आधुनिक तकनीकों से लैस है। प्रत्येक थिएटर में मल्टी स्पेशलिटी प्रकरण के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण भी आसानी से किए जा सकते हैं। संक्रमण को कम करने के लिए ओटी में लैमिनर फ्लो एसी प्रणाली और निर्बाध फर्श लगाए गए हैं। इसके अलावा इनमें से सबसे बड़ा ओटी लेड से इंसुलेटेड है। उपचार के अलावा मॉड्यूलर थिएटर से मेडिकल के छात्रों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी प्रदान होगा। ओटी में होने वाली सर्जरी को डेमो रूम, व्याख्यानशाला या दुनिया में कहीं भी सीधा प्रसारित किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार से बात करती हुई जेपीएनए ट्रॉमा सेंटर में ट्रॉमा और एनेस्थीसियोलॉजी की प्रशासनिक प्रभारी डॉक्टर बबीता गुप्ता ने बताया कि इन मॉड्यूलर थिएटरों के तकनीकों को विश्व स्तरीय पैमानों पर बनाया गया है।
हमारे पास ऑलरेडी 6 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ये 5 और ओटीज बनी हैं जो मॉड्यूलर ओटीज हैं। जो पिछले हमारे 6 थिएटर्स हैं वो मॉड्यूलर नहीं है, ये 6 अलग से हमने 5 मॉड्यूलर ओटीज बनाई हैं जो इंटीग्रेशन के साथ हैं और इनमें अलग से इंडक्शन रूम्स हैं। हर ओटी के साथ एक अटैच्ड इंडक्शन रूम है जिसमें हम एनेस्थीसिया देंगे और उससे टाइम की काफी बचत होगी और नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे।
इसके अलावा एम्स हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर बनाने की प्रक्रिया में भी है जिसे अगले 1-2 वर्ष के अंदर पेश किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, आकाशवाणी दिल्ली।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए सरकार सभी तरीके की उन्नत तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रही है। नई दिल्ली में आज ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो के 12वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने सड़क निर्माण में उन्नत तकनीकों को अपनाने पर बल दिया।
इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। सो इनोवेशन एंड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर एवरी टाइम डेवलपिंग न्यू रिसर्च, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली में विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से विजेताओं ने अपनी कौशल क्षमता दिखाई है। उन्होंने अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम के बारे में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी न केवल कक्षाओं तक सीमित रहेंगे बल्कि अपनी क्षमता को भी बढ़ा सकेंगे। पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर में नगर निगम की ओपन एयर जिम में मशीन के गिरने से 4 वर्षीय बच्चे की मृत्यु के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। एक रिपोर्ट।
मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव एनसीटी दिल्ली सरकार, उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए, आयुक्त दिल्ली नगर निगम एमसीडी और सचिव नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा आयोग ने अधिकारियों से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने संबंधी जानकारी का ब्यौरा देने को भी कहा है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस घटना पर अपनी टिप्पणी देने के साथ ही पुलिस जांच की स्थिति बताने को कहा है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
सरकार ने आज नई दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान शुभारंभ किया। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर आपदा तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से इस पहल से देश भर के किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा। ये पहल ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करेगी। इस पहल की आधारशिला पंचायती राज मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा रखी गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह कल नई दिल्ली में 21वें पशुधन जनगणना अभियान का शुभारंभ करेंगे। गणना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से अगले वर्ष फरवरी तक आयोजित की जाएगी। लगभग 1,00,000 पशु चिकित्सक, अर्ध पशु चिकित्सक जैसे क्षेत्राधिकारी इस गणना प्रक्रिया में शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य भारत में पशु स्वास्थ्य संबंधी ढांचे को मजबूत करना है। सर्वेक्षण के अंतर्गत पशुधन की 15 प्रजातियों को शामिल किया जाएगा। इस गणना में भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे, कुत्ते, खरगोश और हाथी के अलावा किसी अन्य मवेशियों और पोल्ट्री पक्षियों की भी गणना की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रेल मंत्रालय दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 7,000 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इन विशेष रेलगाड़ियों से प्रतिदिन लगभग 2,00,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चलाई गई 4,500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस वर्ष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि प्रशासनिक कारणों के कारण कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन पर यात्री पार्किंग सुविधा को 16 अक्टूबर से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ये बंद अगले आदेश तक जारी रहेगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास नारायणा में एक नई लूप लाइन को आपस में जोड़ने के कार्य के कारण कल सवेरे 10 बजे से रात के 10 बजे तक राजधानी के कुछ इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार इंद्रपुरी, मायापुरी, नारायणा विलेज, नारायणा विहार, मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर, एचएमपी कॉलोनी और कीर्ति नगर के कुछ क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों को आवश्यकता के अनुसार पानी इस्तेमाल करने और इकट्ठा कर रखने की सलाह दी है। सरकार ने देश में डायनेमिक फास्फेट यानी डीएपी उर्वरक की कमी से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि भ्रामक और तथ्यात्मक स्थिति से परे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डीएपी पर सब्सिडी बिल्कुल भी कम नहीं की गई है और इसकी अधिकतम खुदरा कीमत कोविड के समय से ही 1,350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बैग रखी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रवि वर्ष 2024 के लिए डीएपी की सब्सिडी में वृद्धि का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा रवि 2024-2025 के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर 24,475 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कई भू राजनीतिक कारणों के कारण डीएपी की उपलब्धता कुछ हद तक प्रभावित हुई है। हालांकि इस वर्ष सितंबर से नवंबर की अवधि के दौरान उर्वरक विभाग द्वारा डीएपी की उपलब्धता में वृद्धि के लिए गहन प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के स्थापना दिवस के अवसर पर हिमवीरों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईटीबीपी के जवान सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में लोगों की रक्षा के लिए वीरता और समर्पण के प्रतीक के रूप में तैनात हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान बल के जवानों के गौरवपूर्ण तथा प्रेरक प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। MyGov और नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 25 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में मौसम आज सामान्य रहा। हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने छत्रसाल स्टेडियम में आज दिल्ली राज्य स्कूल खेल 2024-25 का शुभारंभ किया। दिल्ली के एम्स में जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रोमा सेंटर में 5 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स का शुभारंभ किया गया। दिल्ली के मोतीनगर में नगर निगम के ओपन एयर जिम दुर्घटना में एक बच्चे की मृत्यु पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। और रेल मंत्रालय दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 7,000 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।